ओम शांति। हमने बहुत सुंदर क्लास सुना, एक बहुत बड़ा विघ्न व्यर्थ, इससे कैसे मुक्त होना। आदरणीय रजनी दीदी को हम धन्यवाद देते हैं। दीदी जी सुन रहे हैं तो ताली बजा सकते हैं आप। अब है दूसरे बड़े विघ्न की बात, आलस्य और अलबेलापन। ये भी ब्राह्मण जीवन का एक बहुत बड़ा विघ्न बन चुका है। आइए इन दो विघ्नों से कैसे मुक्त हो जाए, इस पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है रशिया से पधारे हुए आदरणीय सुधा दीदी जी। दीदी जी आपका सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक हाथ की ताली बजाकर हम दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी बचपन से ही परिवार सहित ज्ञान में चल रही है। लगभग 50 साल से बाबा को जीवन समर्पित किया है। लौकिक में आपने एमएससी एवं बीएड की डिग्री हासिल की। 1989 में जब से रशिया में ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई है, तब से वहां के अनेक शहरों में जाकर आपने सेवा केंद्रों की स्थापना की। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों में आपका क्रियाशील सहभाग रहता है। रशियन गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आपने कई सामाजिक उपक्रम बीकेज के द्वारा संचालित किए हैं। रशिया के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अनेक देशों की यात्रा कर आपने हजारों आत्माओं की ईश्वरीय सेवा की है। रेडियो, टीवी तथा न्यूज़पेपर मीडिया के द्वारा आपके बहुत सारे इंटरव्यूज प्रसारित हुए हैं। आप एक कुशल लेखिका भी है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। वर्तमान समय आप रशिया के मॉस्को एवं उससे संबंधित सेवा केंद्रों की कारोबार का निर्देशन कर रहे हैं। आदरणीय जगदीश भाई जी की पालना प्राप्त कर आपने उनका आदर्श अपने भी जीवन में उतारा है। तो आइए हम क्लास सुनते हैं, आलस्य अलबेलापन से कैसे मुक्त हो, हमारी ब्राह्मण जीवन को हम आगे बढ़ाए। आदरणीय सुधा दीदी जी।
ओम शांति। आलस्य और अलबेलापन से मुक्त ब्राह्मण जीवन। आप में से कौन समझते हैं कि आपको इस क्लास की जरूरत है? आप सभी आलसी हैं क्या? हाँ, आप लोग आलसी हैं? हाँ, नहीं नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, आप में से आलसी कौन नहीं है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा कौन आलसी है? हाँ बताएंगे। तो ये क्लास की जरूरत है क्या आपको? जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर आप आलसी है ही नहीं, आलस्य आपके पास आता ही नहीं, तो जरूरत है क्या? जरूरत है, कभी कभी आ जाता है, या किसी को सुनाने के लिए जरूरत है, अपने लिए जरूरत है, अपने लिए। अब ये बात कहते कहते मुझे एक बात याद आई दादी जानकी की, कि एक बार वो क्लास करा रही थी और हम आगे आगे बैठते हैं तो क्लास के पॉइंट्स नोट कर रहे थे। तो दादी ने पूछा कि मेरा नाम बुला के कि क्या कर रहे हो? मैं कहा दादी पॉइंट नोट कर रहे हैं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। तो दादी ने कहा किस लिए नोट कर रहे हैं, किस लिए नोट कर रहे हैं? तो किसी ने उत्तर दिया कि जब हम वापस जाएंगे ना अपने सेंटर पे, वहां पर हम क्लास में सुनाएंगे, इसलिए नोट कर रहे हैं। तो दादी ने कहा अच्छा आप औरों के लिए नोट कर रहे हो, अपने लिए नहीं, ऐसा? तो अगर हम कोई ऐसी बात अच्छी सी मुरली में या क्लास में सुनते हैं और सुनते समय उस समय कोई दूसरा व्यक्ति सामने आता है, कि ये पॉइंट उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है या ये पॉइंट हम उस व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आलस्य और अलबेलापन है, क्योंकि उस समय हम स्वचिंतन में नहीं, प्रभु चिंतन में नहीं, परंतु पर चिंतन में होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो टॉपिक है वो है रॉयल आलस्य। रॉयल आलस्य जो समझ में क्लियरली नहीं दिखाई देता है कि ये आलस्य है, मगर वो होता आलस्य है या फिर अलबेलापन होता है। तो हमारा टॉपिक आज का है रॉयल आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त ब्राह्मण जीवन। इस टॉपिक में इसको अगर हम दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, पहला है आलस्य और अलबेलापन और दूसरा है मुक्त यानी मुक्ति और तीसरा ब्राह्मण जीवन। तो बाबा हमको ये कहते हैं कि जो आपको मुझसे वर्षा मिलेगा, सभी आत्माओं को, सभी आत्माओं को बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति में तो सभी आत्माएं जाती हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई ये पूछे आपसे कि वो जो मुक्ति धाम है वहां आत्मा किससे मुक्त होती है, वो मुक्ति धाम में वो जो मुक्ति की जो स्टेज है, मुक्ति की अवस्था है, वो क्या होती है, तो हमको बताना पड़ेगा ना उनको। तो मुक्ति की अवस्था माना आत्मा देह से मुक्त है। सबसे पहले देह है नहीं वहां, देह के संबंधों से मुक्त है, जो भी देह के पदार्थ हैं उनसे भी मुक्त है, कोई भी प्रकार के हिसाब किताब से मुक्त है, बीमारियों से समस्याओं से मुक्त है, हर तरीके से। कोई वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई व्यर्थ का चिंतन भी नहीं है। अभी क्लास था व्यर्थ पर, सबसे मुक्त है। लेकिन मुक्ति धाम में आत्मा को ये अनुभव नहीं होता है कि मैं मुक्त हूं, है ना? जानते हैं ना हम ये सब बातें, है तो आत्मा मुक्त, लेकिन वहां आत्मा मुक्ति का अनुभव नहीं करती है। जैसे सतयुग में आत्मा को ये अनुभव नहीं होता कि मैं जीवन मुक्त हूं, बस वो स्वर्गिक सुखों का आनंद लेती है। उसको जीवन मुक्त शब्द भी हमें वहां पता नहीं होता है। हमें सतयुग में स्वर्ग क्या होता है ये शब्द हमको नहीं मालूम, बस हम मौज का जीवन जी रहे होते हैं। तो इसलिए वहां अनुभव की बात नहीं है, इसलिए बाबा ये बात कहते हैं कि जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव आपको अभी ब्राह्मण जीवन में करना है। तो आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त ब्राह्मण जीवन। अब मुक्ति में तो देह नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो देह है। वहां देह के संबंध नहीं होते, यहां तो देह के संबंध हैं। वहां पदार्थ नहीं होते, यहां तो पदार्थ हैं। वहां हिसाब किताब नहीं होता, यहां तो हिसाब किताब हैं। तो फिर मुक्ति का अनुभव कैसे करना है, मुक्ति का अनुभव कैसे करना है? जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से देह के संबंध, देह के पदार्थ और जिसकी वजह से हमारा हिसाब किताब यानी नेगेटिव हिसाब किताब जो बनता है वो है विकार। देह तो सतयुग में भी होती है, देह के संबंध भी होते हैं, देह के पदार्थ भी होते हैं, मगर वहां कोई हिसाब किताब, बीमारी, समस्या, कर्म भोग कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर विकार नहीं होते। और यहां बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में देह के होते, देह के संबंधों के होते, देह के पदार्थों के होते आपको क्या अभ्यास करना है? आपको अभ्यास करना है विकारों से मुक्ति का, विकारों से मुक्ति का। क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण माना हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही हैं, शुद्ध अन्न सात्विक भोजन तो हम खाते ही हैं, सत्संग भी हम करते ही हैं, है ना? आप में से कोई है जो अशुद्ध अन्न भी कभी कभी खा लेता है? थोड़ा सा कहीं मार्केट में, है ना, कोई डोसा, कोई गोलगप्पे, हाँ, कोई ऐसी वाली चीज कोई खा लेते हैं, अच्छा होता है ना, डिलीशियस होता है? नहीं, कोई भी नहीं, सब इस चीज का ध्यान रखते होंगे ना। तो क्योंकि अन्न का भी तो मन पर असर होता है, तो ब्राह्मण हम बने हैं माना हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और सत्संग करते हैं, न हम तामसिक या तामसिक भोजन खाते हैं, न कुसंग में जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कई और भी विकार हैं, परंतु बाबा ने एक बार कहा था कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? कौन सा विकार? कौन सा जी? आलस्य। काम विकार दुश्मन हमारे लिए नहीं है अब, क्योंकि हमने उसको जीत लिया, ठीक या नहीं? जीता, जीत लिया ना? किसने जीता? जरा हाथ तो खड़ा कीजिए। जीत लिया, वेरी गुड, आपके लिए तालियां बजाइए सबके लिए। हाँ, वो दुनिया के लिए दुश्मन है, हाँ, उनको जीतना है, हमने तो जीत लिया। अच्छा, उसके बाद क्रोध को किसने जीत लिया? क्रोध को अच्छा किसने नहीं जीता? अभी उसको जीतना बाकी है। अच्छा, ओके, बाकी मैं और नहीं पूछती हूं, वो तो आप सब जानते हैं। परंतु बाबा ने ये कहा था कि जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आलस्य और अलबेलापन, क्योंकि इसकी वजह से अन्य विकार भी आ जाते हैं, अन्य विकार भी आ जाते हैं या आ सकते हैं। क्रोध भी क्यों आता है? क्या हमको ये मालूम नहीं कि क्रोध हमारा दुश्मन है? क्या हमको ये मालूम नहीं कि क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? क्या हमको ये मालूम नहीं कि क्रोध से जब हमारा तनाव बढ़ता है तो हमारी हेल्थ खराब होती है? हमें पता है, लेकिन वो क्यों आ जाता है? क्योंकि अलबेलापन है, हमने क्रोध को छुट्टी दी हुई है, उसको आना अलाउड है। काम विकार को आना अलाउ हम नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध को अलाउ कर देते हैं, अहंकार को अलाउ कर देते हैं, लोभ और मोह को भी अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अलबेलापन है। इसलिए बाबा ने कहा था कि जब तक आलस्य और अलबेलेपन के सब रूपों को नहीं जीतेंगे तब तक संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकेंगे। और अगर संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनेंगे तो हम अभी भी कोई ना कोई नेगेटिव हिसाब किताब बनाते रहेंगे, किसी से झगड़ा कर लेंगे, किसी के ऊपर रोब लगा देंगे, कोई लोभ से चीज ले लेंगे, किसी के प्रति अटैचमेंट हो जाएगा, कहीं लगाव हो जाएगा, कहीं झुकाव हो जाएगा, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, कुछ 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 हो जाएगा। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन हमारे जीवन से अभी गया नहीं है। इसलिए टॉपिक ये सिलेक्ट किया गया, जो संडे बीता है ना, फर्स्ट मार्च में बाबा की मुरली में था, अव्यक्त मुरली में, कि आलस्य और अलबेलापन के कितने रूप होते हैं, उस पर क्लास करना। ये बाबा की मुरली में से टॉपिक है। तो कितने रूपों में वो आ जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको उस सबको जीतना बहुत 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 जरूरी है। तो ये बात अभी हम सोचेंगे कि अब बाबा ये क्यों चाहते हैं कि हम इन विकारों को, यानी मुख्य रूप से आलस्य अलबेलेपन को जीतें। बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या भावना है? जैसे लौकिक में भी माता पिता की बच्चों के प्रति क्या भावना होती है कि बच्चे सदा खुश रहें, ऐसा ही होता है ना। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाबा बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे सदा खुश रहें और खुशी बांटें, यही बाबा की इच्छा है। बाबा को और कोई अपने लिए तो इच्छा है नहीं, बच्चे सदा खुश रहें, खुशी बांटें और सदा ऊंची स्थिति में रहें, श्रेष्ठ स्थिति में रहें, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी नशा, रूहानी नशे की स्थिति में रहें, ये बाबा की इच्छा है। लेकिन उसके लिए फिर बाबा विधि क्या बताते हैं कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बनाओ, मेरी कंपनी में रहो और उससे भी ऊपर कंबाइंड रहो। आज भी बाबा ने वरदान में यह बात कही, कंबाइंड, मुझे कंपेनियन बनाओ, मेरी कंपनी में रहो और या फिर कंबाइंड रहो, जुड़े रहो मुझसे। अगर हम बाबा से जुड़े हुए होंगे तो जैसा बाबा, या बाबा हमारा कंपेनियन होगा तो जैसा बाबा वैसा मैं, क्योंकि बाबा जो तो सर्वशक्तिवान है, बाबा को मेरा रंग नहीं लगेगा, मुझे बाबा का रंग लगेगा, या उल्टा भी हो सकता है, हमारा रंग बाबा को लग जाएगा, मेरे में आलस्य है, बाबा भी आलसी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे में अलबेलापन है, बाबा भी अलबेला हो जाएगा? नहीं, बाबा का जो रंग है वो मुझ पर लगेगा, क्योंकि बाबा हाई लेवल पर है और मैं उनके साथ हूं, तो बाबा का रंग मुझे लग जाता है। तो अगर हम बाबा की कंपनी में हैं, अगर हमने बाबा को अपना कंपेनियन बनाया है, अगर हम कंबाइंड हैं, तो हम बाबा के रंग में रंग जाते हैं। और बाबा तो सत चित आनंद, सदा आनंदित है, और अगर हम बाबा के रंग में रंग जाते हैं तो हम भी मास्टर सत चित आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अब बाबा तो बिंदु है, हम शरीर में हैं, हैं तो हम भी बिंदु, मगर हमारे पास तो इतना बड़ा शरीर है, इतने सारे शरीर के संबंधी हैं, इतने सारे शारीरिक लेन देन होते हैं। तो बाबा ने जो उसकी विधि बताई है ना, कैसे हम बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर रखें, उसके लिए दो बातें हैं, उसको आप जरूर नोट कीजिए। वो दो बातें हैं कि जो ब्राह्मण जीवन का टाइम टेबल है, सुबह से लेकर रात तक ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या को अगर आप कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो माना बाबा आपका कंपेनियन है। उस दिनचर्या में भी तीन चार बातें मुख्य हैं। नंबर वन, अमृत वेला। अगर हम अमृत वेला मिस करते हैं, या अमृत वेला उठते तो हैं मगर इतना अच्छा नहीं होता है, बैठ भी जाते हैं मगर बाबा से कनेक्शन नहीं होता, तो हमारा जो फाउंडेशन है ना दिन का, वो वीक हो जाता है। उसमें फिर बाबा के साथ, बाबा तो बहुत ऊंचा है, उसमें फिर दिन भर बाबा की कंपनी में रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ब्राह्मण जीवन के लिए, वो है मुरली क्लास। अमृत वेला मुरली ब्राह्मण जीवन का भोजन है। आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा कमजोर हो जाती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इस दिनचर्या में, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। चौथा, शाम का योग। और पांचवा, भोजन ग्रहण करते समय साइलेंस में रहें और बाबा की याद में खाएं। पांच बातें, ठीक है? पांच बातें कौन सी? पहली बात अमृत वेला, दूसरी बात मुरली क्लास, तीसरी बात ट्रैफिक कंट्रोल, चौथी बात शाम का योग, और पांचवी बात भोजन खाते समय शांत रहें, आपस में बातचीत नहीं करें। ऐसा संभव है? संभव है? है ना संभव? ऐसा जिसको संभव है, जरा पांच बातों पर अटेंशन हाथ खड़ा करेंगे। वाह, वेरी गुड। तो आज डाइनिंग हॉल में बिल्कुल शांति होगी, शांति होगी ना? अच्छा, पता है क्या है इंपॉर्टेंट बात? ऐसा नहीं कि भोजन खाते समय हम बातचीत ना करें, परंतु जब हम चम्मच से लेते हैं ना, खाते हैं, तो वो चम्मच की खटखट भी नहीं आनी चाहिए। इतना उसको शांति से लें कि वो चम्मच का शोर भी नहीं आए। वो कब होगा? जब हम उसको बाबा की याद में लेंगे। अगर हम कोई और संकल्पों में लेंगे ना, तो ठक ठक करके लेंगे फिर। और अगर हम बाबा की याद में डाइनिंग हॉल की तरफ जाएंगे तो एकदम साइलेंस में जाएंगे। तो ऐसा आज से एक्सपेरिमेंट शुरू करना कि हमें ये पांचों बातों पर अवश्य ध्यान देना है, तो आपको महसूस होगा कि आप सारा दिन आपका योग लगा ही रहा। आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, बाबा खुद आपको याद करेगा, बाबा आपको याद करेगा, क्योंकि आप बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हो। बाबा किसको प्यार करता है? बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा को कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा बाबा को प्रिय है। तो ज्ञानी तू आत्मा कौन है? जो ज्ञान के जो नियम है उनके आधार पर चलती है। ऐसा नहीं कि मुझे पता है मैं आत्मा हूं तो मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मुझे पता है कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है तो मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मुझे पता है कि तीन लोक होते हैं तो मैं ज्ञानी आत्मा हूं। पता है तो क्या हुआ? ये तो बहुतों को बहुत कुछ पता होता है। भक्ति में भी गीता पढ़ते हैं, उनको गीता कंठ भी होती है, उसमें लिखा होता है काम क्रोध लोभ नर्क का द्वार है। लेकिन जीता तो है ही नहीं। मुझे सिर्फ पता है, इसको ज्ञानी आत्मा नहीं कहा जाता। लेकिन ज्ञानी किसको कहा जाता है? जो ज्ञान का स्वरूप बनता है, जो उनके नियमों पर, उनके आधार पर चलता है। तो अगर हम अपना टाइम टेबल, ये पांच बातें ध्यान रखेंगे, तो बाबा हमारा कंपेनियन है, बाबा हमको याद करेंगे। दूसरी बात में चार पॉइंट्स हैं। पहली बात, स्मृति। मेरी स्मृति में क्या हो? बाबा कहते हैं आपकी स्मृति में पावरफुल बातें होनी चाहिए, पावरफुल स्मृति। आज की स्मृति, आज की मुरली के हिसाब से अगर एक पॉइंट याद रखें तो मैं कौन हूं, मेरी स्मृति, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, ये स्मृति, मैं वानप्रस्थी हूं, वाणी से परे की स्थिति में हूं। तो स्मृति पावरफुल, श्रेष्ठ। वृत्ति कल्याणकारी। वृत्ति का मतलब भावना। दृष्टि आत्मिक, ओके। और कृति, केवल कृति माना कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म। ये चार पॉइंट्स। तो टाइम टेबल फिजिकल है, लेकिन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, ये सूक्ष्म है, ओके। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बाबा हमारा कंपेनियन है। अगर इसमें से कुछ हम लूज हो जाते हैं, फिर हमको योग लगाने में मेहनत करनी पड़ती है। कंबाइंड होने का तो फिर सवाल ही नहीं। फिर बाबा हमारा कंपेनियन नहीं रहता है। एक्चुअली बाबा साथ नहीं छोड़ता, साथ हम छोड़ देते हैं। हमारी स्मृति में अगर कुछ लौकिक बातें आ गई तो फिर वहां बाबा के लिए तो जगह ही नहीं है। हमारी वृत्ति में किसी के लिए नेगेटिव आ गया तो बाबा तो वहां रहेगा ही नहीं। हम सबको पता है कि जब भक्ति में भी मंदिर बनाते हैं, वहां मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो मूर्ति की स्थापना करने के पहले वहां हवन, यज्ञ इत्यादि सब करते हैं, सब स्वच्छता लाते हैं। तब मूर्ति, सो भी पत्थर की मूर्ति है कि मिट्टी की है, किस चीज की मूर्ति है, चाहे सोने की भी मूर्ति हो, मगर मूर्ति है, उसकी स्थापना स्वच्छ स्थान पर होती है। तो भगवान बाबा किस स्थान पर आएगा? स्वच्छ मन में आएगा ना। अगर भावना ठीक नहीं है तो बाबा वहां नहीं आएगा, बाबा वहां नहीं आएगा। बाबा हमेशा परम धाम में रहते हैं ना। परम धाम तो एकदम परम पवित्र है। तो इसलिए पहला टाइम टेबल, दूसरा स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति पर विशेष अटेंशन। अब तीसरा पॉइंट जो हमको लेना है वो क्या है कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों बाबा इस पर फोकस डालता है। आप अमृत वेले को ही ले लो। अब अमृत वेले का समय ऐसा है सवेरे का, जो उस समय सबसे अच्छी नींद आती है। सारी रात नींद नहीं आई होगी ना, तो 3:30-4 बजे बहुत बढ़िया नींद आती है। और बाबा कहते उसी समय उठो, फिर ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, क्लास में आओ, मुरली सुनो, भाई आराम से घर में बैठ के बारिश में पकौड़े खाओ। हाँ, अब हमको तो क्लास में जाना है। वही वाला समय है बाबा ने जो फिक्स किया है। क्यों बाबा ने ऐसा किया है? बाबा तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कल्याणकारी है, तो बाबा ने ये टाइमिंग्स क्यों फिक्स किए पुरुषार्थ के लिए?
शिव पिता को अब याद करो।
तो बाबा क्यों कहते हैं इस पुरुषार्थ के लिए? क्योंकि बाबा का आना होता है कलयुग अंत में, जब माया अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। दुनिया की आत्माओं की गिरती कला होती है, दूसरे शब्दों में ये कहें माया की चढ़ती कला होती है, माया की भी चढ़ती कला। माया अधिक से अधिक तमोगुणी बनती चली जाती है, यानी माया का जो अट्रैक्टिव फॉर्म है, आकर्षककारी रूप है, वो बहुत 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 पावरफुल होता चला जाता है। विकार तो है ही है, भयंकर रूप भी है उसका, लेकिन एक आकर्षण अट्रैक्टिव फॉर्म जो उसका है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। और हम ब्राह्मण जो संगम युग में हैं, हमारी भी चढ़ती कला है, तो कंपटीशन है। इधर हम हैं, इधर माया है, कंपटीशन। हम चढ़ रहे हैं, तो अगर हमारा पुरुषार्थ पर अटेंशन ना हो, तो जो ये माया जब चढ़ती है ना, तो हम माया के प्रभाव में आने की बहुत 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 चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। यहां तक कि जो हमारा सब्जेक्ट सेवा है, सेवा सब्जेक्ट भी माया का रूप ले लेता है। सेवा की भावना खत्म हो करके उसके में नाम मान शान की भावना आ जाती है। अगर हम नाम मिलता है तो अभिमान आ जाता है, नाम नहीं मिलता है तो अपमान की फीलिंग हो जाती है। ये क्या हो रहा है? हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इधर माया आ रही है, वो आकर्षण। अच्छा, उस व्यक्ति ने इतनी सेवा की, उसको बहुत इज्जत मिल गई, उसका इतना नाम हो गया, कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो सेवा की भावना खत्म होकर के कंपटीशन की फीलिंग में चले गए। जब कंपटीशन की फीलिंग में चले जाते हैं, नाम मान शान की फीलिंग में चले जाते हैं, तो वहां माया के प्रभाव में आ गए, तो बाबा का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है और हम धीरे 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 चढ़ती कला की बजाय नीचे आना शुरू हो जाते हैं, हमारी खुशी कम होना शुरू हो जाती है। ये साइन है। अगर हम चढ़ती कला में हैं, तो हमारी खुशी बढ़ती जाती है, चीजों के आधार पे नहीं, साधनों के आधार पे नहीं, नाम मान शान के आधार पे नहीं, मेरी आंतरिक खुशी, जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है परिवार से, बाबा से, उसके आधार पर हमारी खुशी बढ़ती चली जाती है। और अगर वो हमको नहीं मिलता नाम मान शान, उसकी वजह से खुशी कम हुई, माना हम माया से प्रभावित हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज, यही आलस्य है माया, जिसको रॉयल आलस्य कहते हैं ना, कि सेवा की भावना खत्म होना ये आलस्य है। ये लगता पता नहीं चलता है, सेवा की भावना खत्म होके कंपटीशन की फीलिंग आ गई, अगर उसके कारण हम सेवा कर रहे हैं, नाम मान शान के कारण कर रहे हैं, इसको रॉयल आलस्य कहा जाता है, अलबेलापन कहा जाता है। उसके कई कई रूप होते हैं, कई रूप होते हैं। तो यहां तक जो आजकल मोस्ट मॉडर्न जो आलस्य है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रयोग, और प्रयोग के बाद दुरुपयोग। आजकल कितने ही लोग ब्राह्मण परिवार में भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, कोई फोटोज बनाते हैं, कोई गीत बनाते हैं, कोई कुछ और बनाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने होली ग्रीटिंग का कार्ड भेजा, इतना छोटा सा, चित्र तो उसमें ठीक था व्हाट्सएप पर, लेकिन इस छोटी सी इतनी सी लाइनों में, 8-10 लाइनें होंगी, उसमें 16 मिस्टेक्स थी, 16 मिस्टेक्स। मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के कारण, क्योंकि मुझे वो सुविधा है, ये जो मुझे बुद्धि भगवान ने दी है उसका प्रयोग तो मुझे करना नहीं पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करो, काम हो जाएगा, गीत बन जाएगा, म्यूजिक बन जाएगा। इसको कहते हैं आलस्य, ये सबसे मॉडर्न आलस्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भावना नहीं है, बाबा क्या कहते हैं, प्रीत बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रीत है क्या? है उसमें प्रीत? है निश्चय बुद्धि, उसमें कोई निश्चय की बात है नहीं। तो अगर हम उसके पीछे दौड़ते हैं, एक तरफ से हम मोस्ट मॉडर्न है, मोस्ट एक्टिव है, क्योंकि सबसे मॉडर्न चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हम उसके अधीन हो गए। स्पिरिचुअल भाषा में ये रॉयल आलस्य और अलबेलापन है, हम अपने ब्रेन को डेड कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को डेड कर रहे हैं। अगर उसका प्रयोग करना भी है, बाबा के शब्द हैं, साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी साधना को मत भूलो। साधना का, साधनों का प्रयोग करो मगर साधना को मत भूलो। अगर साधना को भूल जाएंगे तो साधन आपके मालिक बन जाएंगे, आप उनके गुलाम बन जाएंगे, और जो गुलाम होता है वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन व्यक्ति के तो स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। तो अगर हम साधनों के अधीन हो जाएंगे तो हम सुखी खुश नहीं रह सकते, तो खुशी बांटने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाबा चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें और खुशी बांटें। इसलिए बाबा ने यह बताया है कि माया को केवल जो ज्ञानी आत्मा है ना, वो न केवल आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र कल्प वृक्ष त्रिमूर्ति सीढ़ी के ज्ञान को जानती है, परंतु ज्ञानी तो आत्मा माया को भी अच्छे से जानती है। माया क्या है, माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानती है। तो इसलिए अब हम आएंगे इस बात के ऊपर कि आलस्य और अलबेलेपन के क्या क्या रूप होते हैं, उससे हमको अपने आप को कैसे सावधान करना है। उसके कई रूप हैं, उसमें से एक रूप है कि हम तो बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं, अभी 30 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, हमको क्या अभी माया पकड़ेगी, हम तो पुराने हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आज हमने मुरली नहीं भी सुनी तो हर्जा नहीं, अगर हम आज सुबह नहीं भी उठे तो कोई नहीं, तो पुराने हैं बाबा, तो माया क्या लेगी हमको। अगर हमको ये संकल्प आया तो माया ने तो ऑलरेडी पकड़ लिया। इसलिए बाबा रोज कैसे एड्रेस करते हैं मुरली में, मीठे बच्चे। आपको अगर 50 साल भी ज्ञान में चलते हो गया तो अपने को मत भूलो कि मैं बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं, मैं स्टूडेंट हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान का स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, और मुझे भगवान के पदचिन्हों पर उनका मैं शिष्य भी हूं, बाप टीचर सतगुरु, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भूल जाता है कि मैं विद्यार्थी हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, ये आलस्य है। स्टूडेंट माना मैं सीख रहा हूं, सीखने की भावना अगर खत्म होती है तो ये आलस्य है। मुझे सीखना है, चाहे मुझे कितना भी ज्ञान है, चाहे मुझे कितने भी वर्ष हो गए, चाहे मैंने कितने भी सेंटर्स खोल दिए, चाहे मैंने कितनी भी सेवा कर दी, लेकिन मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान का विद्यार्थी हूं, मैं सीख रहा हूं, सीख रही हूं। तो दादी जानकी यही बात बोलती थी कि जिसने सीखने की भावना को खत्म कर दिया वो बूढ़ा हो गया, वो फास्ट नहीं चल सकता, और हो सकता है उसको कोई सहारा लेके चलाना पड़ता है। और जो सीखता रहता है वो एवर यंग रहता है। तो ये सदा याद रखिए, कभी मत सोचिए कि हम बहुत पुराने हो गए हैं पढ़ाई के समय, लेकिन जब एग्जामिनेशन आते हैं तो पुरानेपन का जो अनुभव है उस अनुभव का प्रयोग कीजिए, तो मालूम पड़े कि आप पुराने हैं। उस अनुभव को ऐसा प्रयोग कीजिए कि एग्जामिनेशन में आप पास हो जाएं, परिस्थिति आप पर हावी न हो सके। और ऐसा ही दूसरा आलस्य का रूप है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, हम तो अभी नए हैं, अगर अभी पुराने ही संपूर्ण नहीं बने, अगर अभी पुराने ही परफेक्ट नहीं बने तो हम क्या बनेंगे, ये भी माया है, ये भी आलस्य है, हम तो अभी नए हैं। हाँ, या फिर हम तो अभी छोटे हैं, जिम्मेवार तो दूसरे लोग हैं, ये भी आलस्य का रूप है। बाबा कहते हैं अगर आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया, अगर आप अपने को ब्राह्मण कहलाते हो तो आप पुराने हो। लेकिन ये संकल्प आ जाता है कि हम तो अभी नए हैं, अभी हमसे तो गलती होगी ही, हम तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है तो हमसे गलती होगी ही, उसको कहते हैं आलस्य। अगर गलती हो गई तो हम सॉरी कहते हैं और पूछते हैं ताकि दोबारा गलती न हो। उसको ये मम्मा कहती थी कि पुरुषार्थी कौन है जो गलती रिपीट नहीं करता है। अगर हम ये कहते हैं कि गलती होती है क्योंकि हम तो अभी पुरुषार्थी है ना, ये आलस्य है, ये आलस्य है। जैसे हमने, जैसे भक्ति में होता है ना कि भाई मनुष्य तो गलती करेगा ही और भगवान उसको माफ कर देगा क्योंकि हमने आरती बोल दी, पूजा कर दी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमसे गलती तो होगी ही क्योंकि हम संपूर्ण अभी बने नहीं, तो ये ज्ञानी तो आत्मा नहीं, ये भक्त की क्वालिटी हो जाती है। रियलाइजेशन कि हमसे ये गलती हो गई, हमें ध्यान देना है कि एटलीस्ट अगर अगली बार हो भी तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम 5 मिनट लेट हो गए क्योंकि हमको लेट होने की आदत है, तो कल कम से कम 5 मिनट नहीं, चलो 4 मिनट हो जाए, 1 मिनट तो कम हो जाना चाहिए। और नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं मैं 1 सेकंड भी लेट नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम पर आता हूं। हमको तो बाप समान बनना है। तो आलस्य क्या है? अगर हम अलबेले होकर के कहते कोई बात नहीं 5 मिनट ही तो लेट हुआ, वो व्यक्ति 5 मिनट वेट कर लेगा हमारे लिए, इसको कहते हैं अलबेलापन और आलस्य। कभी कभी कोई अच्छे काम को पोस्टपोन करने की आदत होती है, यहां तक कि मान लीजिए ये चश्मा है ना, अब चश्मे को मुझे चश्मे के केस में रखना है और ऐसा ही चश्मा किसी और का भी हो सकता है ना, तो हम अलबेलेपन से उसको कहीं पे भी रख देते हैं, रख देंगे बाद में, उसको रख देंगे स्थान पर, छोटी सी बात है। तो ये जो कोई भी काम को पोस्टपोन करने की आदत है ना, उसको कहते हैं अलबेलापन, आलस्य। तो दुनिया में कहावत है कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब कर। बाबा भी क्या बोलते हैं, नाउ और नेवर, ये बाबा का फॉर्मूला है। और अगर हम नाउ न करके लेटर बाद में करेंगे, इसको आलस्य कहते हैं, इसको आलस्य कहते हैं। तो हमको अपने को चेक करना है कि हम कोई ना कोई ऐसी पोस्टपोन करने की आदत तो हमको नहीं है। अच्छा, फिर एक और प्रकार का आलस्य होता है, वो है एक संकल्प आता है भाई क्लास सुबह 6:30 बजे शुरू होती है, 6:30 से 7 बजे तक योग होता है, 7 बजे मुरली शुरू होती है, तो 6:30 से 7 कोई बात नहीं, 7 बजे पहुंच जाएंगे, क्लास तो 7 बजे शुरू होगी, जैसे कि योग तो लेसन है ही नहीं। और दूसरा संकल्प क्या आता है, हम तो राजयोगी कर्मयोगी है ना, जरूरी थोड़ी है कि बैठकर योग लगाएं, चलते फिरते भी लगा सकते हैं। एक होता है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारियां हैं, कोई और शारीरिक कारण है ना, कोई की तबीयत भी ऐसे होती है तो उसकी वजह से है, कोई और अन्य जिम्मेवारी का काम है। लेकिन एक है लापरवाही के कारण, कि वो आधा घंटा जो योग का है वो अगर हम न भी पहुंचे तो हर्जा नहीं, क्योंकि हम तो राजयोगी कर्मयोगी हैं, हमको जरूरी नहीं है कि हम बैठ करके योग लगाएं। अगर जरूरी न होता तो हमारा क्लास का सिस्टम ये न होता कि पहले योग फिर मुरली फिर योग। ये न होता, लेकिन हम उसमें थोड़े थोड़े कभी कभी आलसी हो जाते हैं, समझते मुरली तक पहुंच जाएंगे वो भी अच्छा है, और धीरे धीरे मुरली में भी लेट होना शुरू हो जाते हैं। हम मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति वहां तक भी पहुंच जाएंगे तो भी ठीक है, कम से कम बाबा का याद प्यार तो सुन लिया, उसके बाद धारणा का सार सुन लेंगे, फिर वरदान सुन लेंगे, फिर स्लोगन सुन लेंगे, फिर अव्यक्त इशारा सुन लेंगे, हो गया काम। नहीं, बाबा तो पूरी मुरली सुनाई, हमने तो उसका 1/3 भी नहीं सुना, 1/5 भी नहीं सुना, तो फिर हम बाप समान कैसे बनेंगे। तो ऐसे अपने से बातचीत करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक होता है जिसको बाबा ने उस मुरली में कहा था, पुराने संस्कारों को ये कहना कि ये मेरा संस्कार है, इसको भी आलस्य कहा जाता है। वो माया के संस्कार है, मेरे नहीं, रावण के संस्कार है, वो रावण की प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे संस्कार कौन से हैं? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, हमारे ये वाले हैं। आत्मा के 7 गुण वो हमारे संस्कार हैं, बाकी दूसरे वाले वो रावण के संस्कार हैं। लेकिन अगर हम उनको अपना कह देते हैं तो वो आलस्य होता है। और एक और लास्ट बात बताएं टाइम को देखते हुए, कि एक और जो संकल्प आता है कि भाई सभी तो राजा नहीं बनेंगे ना, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो माली भी बनेगा, कोई तो नौकर भी बनेगा, है ना, कोई तो मतलब किचन में भी काम करेगा, कोई तो कुछ और भी करेगा, थोड़ी सारे ही राजा बनेंगे, तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना। अगर ऐसा भी संकल्प आता है इसको आलस्य कहा जाता है। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं और अपने को फॉल्स सेटिस्फेक्शन, झूठा संतुष्ट करते हैं, स्वर्ग में तो आएंगे ना, चलो कोई बात नहीं, पहले जन्म में ना सही, चौथे में ही सही, चौथे में नहीं सही तो त्रेता युग में ही सही, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आएंगे तो सही। इसको बाबा आलस्य कहता है। इसलिए बाबा ने बताया है कि बच्चे याद रखो कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझ ब्राह्मण पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे विश्व को, न केवल मुझे खुद को, लेकिन मुझे पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बतानी है अपने प्रैक्टिकल लाइफ से। सभी तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ये तो है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार उन्हें यहां से ही मिलेगा। और जिम्मेवार कौन है? मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण। अगर ये जिम्मेवारी का एहसास होगा तो कभी भी आपको आलस्य या अलबेलापन नहीं आएगा। सिर्फ इतना याद रखिए, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। ब्रह्मा बाबा की हमने बहुत कहानियां सुनी हैं, बड़ों की बहुत कहानियां सुनी हैं, उनके जीवन को देखा है, कितनी भी कोई परिस्थितियां हों, लेकिन अब उनकी जिम्मेवारी के एहसास ने उनको जिंदगी के लास्ट क्षण तक बहुत एक्टिव रखा, आलस्य उनको छू नहीं पाया। तो हम भी तो उसी परिवार के मेंबर्स हैं, है ना, उसी बाबा के बच्चे हैं, उसी बाबा के विद्यार्थी हैं, इसलिए आलस्य और अलबेलेपन से हम सदा मुक्त हैं। हमारा ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, ठीक है, ओके, याद रखेंगे ना। तो कौन सी बातें हमने की, हमारा टाइम टेबल, उसमें 5 बातें, और उसमें भी अंडरलाइन वाली बात कौन सी, अमृत वेला, और दूसरा मुरली क्लास, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल, चौथा शाम का योग, पांचवा भोजन, भोजन के समय साइलेंस। मैं क्यों याद दिला रही हूँ, क्योंकि अभी आपको भोजन पर जाना होगा इसके बाद, इसलिए इसको याद रखेंगे और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस सदा के लिए फिक्स हो जाएगी। ओके, ओम शांति।
सभी एक हाथ की थाली से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे, फिर धन्यवाद नहीं करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि जो अभी दीदी जी ने रिपीट किया है सब करके दिखाएंगे, दिखाएंगे ना, जोर से हाँ आ रही है दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू जी, थैंक यू जी।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है, योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन